وقال الله، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، نہ تم بناؤ دو الہ، تم دو الہ نہ بناؤ. اب دیکھیں یہ عیسائیوں میں دو الہوں کا کانسیپٹ، یا اور دو الہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور کسی اور کو بھی ساتھ الہ بنا لیا. انما ہوا الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے. اور ان کو دیکھ لیں جو بت پرست ہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے ہی الہ بنا لیے، انہوں نے تو بہت ہی سارے بنا لیے، ان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. لیکن بعض مشرقین ایسے تھے جنہوں نے دو الہ اس طرح بنائے ہوئے تھے کہ ایک خیر کا الہ ہے اور ایک شر کا. وہ کہتے تھے خیر کا الہ تو اللہ ہے اور شر کا خدا جو ہے وہ شیطان ہے. استغفر اللہ. تو اب اس کو بھی الہ ہی بنا لیا، خدا ہی بنا لیا، جب اس سے بھی ڈرنے لگے پھر کہ یہ ہمیں کوئی شر نہ پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہ تو ایک ہی ہے، فَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ، بس صرف مجھے سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. یاد رکھیں کہ اس کا مطلب جب انسان اللہ تعالیٰ کو الہ مانتا ہے تو صرف اسی سے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب آپ نے ساری پاور ایک کے ہاتھ میں سمجھ لی نا، تو یاد رکھیں جس کے ہاتھ میں انسان پاور سمجھتا ہے اسی سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آج اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو یہ نہ ہو کہ یہ مجھے کوئی سزا دے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کے ہاتھ میں تو ساری پاور ہے، میرا رزق، میری روٹی، میرے گھر والے، میری زندگی، میرا وقت، میرا مال، میری سانس، میری ہر چیز، میری صحت، میری ایوری تھنگ اس کے ہاتھ میں ہے. تو کیا پھر ڈر نہیں لگے گا؟ خود سوچے نا، جب آپ نے کسی کو اتنی بڑا پاور سمجھ لیا کہ وہ اتنی بڑی پاور اکیلے اس کے ہاتھ میں ہے، تو کیا افورڈ کر سکیں گے اس کو ناراض کرنا؟ کیا یہ ڈر نہیں لگتا رہے گا، ہائے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے؟ خود بتائیے. لیکن پرابلم ہی یہاں پہ نا، انفارمیشن ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ یقین کی حد تک نہیں ہمارے اندر اترا، اس کی ڈیپتھ نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم واقعی یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اس کے ہاتھ میں سب پاور ہے، میرا جینا مرنا اس کے ہاتھ میں ہے، میرے بچے اس کے ہاتھ میں ہیں، میرے پیارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں، میرا امن، چین، سکون، خوشیاں سب اس کے ہاتھ میں ہیں. جب انسان یہ سوچتا ہے وہ تو جھک ہی جاتا ہے. ہم تو اتنے سے باس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تو ایک پولیس والا آتا ہے تو اس کے سامنے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، ہم تو امیگریشن والا ہم سے دو سوال کر لے تو ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو حالانکہ ہمارے جیسے انسان ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ بھی ایک انسان ہی ہے، اس کی بھی ابھی جان نکل جائے کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے چیز وہ، ہمارے جیسا ہے، ہماری طرح سانس لیتا ہے، اس کی بھی ہمارے طرح کے مسئلے ہیں. تو تب بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ خدا جس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، جس سے بڑا درجہ کسی کا ہے ہی نہیں، جس سے زیادہ طاقتور کوئی اور ہے ہی نہیں، جس کے ٹاپ پہ کوئی نہیں، از آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ. جب یہ یقین آئے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ جھکیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ اپنی بندگی کا اظہار کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ سجدے کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری نہ کریں؟ تو یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے نہیں پہچانا اس کو. قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے قدر ہونی چاہیے تھی. آپ نے جانا ہی نہیں نا، پتہ ہی نہیں ہے، تو پتہ کون کرے گا پھر؟ پتہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. یہ نہ ہو کہ ایسے ہی زندگی گزار کے قبر میں چلے جائیں اور پتہ ہی نہ ہو، کس خدا کو پوچھتے رہے. اللہ نہ کرے. تو فَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ، پس صرف مجھے سے ڈرو. اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو جس کا ڈر ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا، اگر تمہارا ایمان ہے کہ وہ ایک خدا ہے، اس کے اوپر تمہارا ایمان ہے. تم کہتے تو ہو میں ایمان والا ہوں، لیکن اگر واقعی ایمان ہے تو صرف اس سے ڈرو. ہمارے ڈر کتنے ہوتے ہیں، किस किस से हम डरते हैं, कभी बरादरी से डरते हैं, कभी बच्चों से अपने डरते हैं, कभी हस्बैंड से डरते हैं, कभी लोग क्या कहेंगे इससे डरते हैं। हर तरह के डर तो हमारे अंदर है, एक नहीं डरते तो अल्लाह से नहीं डरते, ऐसा ही है ना। किस दिन हम इनसे बेखौफ होके सिर्फ एक अल्लाह से खौफ रखेंगे, किस दिन। इवन पुलिस वाले से भी डर जाते हैं लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं। अलहुमा फिस्समावाति वल अर्दि वलहु वलहुद्दीन वासिबा, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में। अब कोई रह गई चीज, इससे एक्सक्लूडिंग कोई और चीज है कि हम कहें कि अच्छा वो चीज है वो अल्लाह की मिल्कियत नहीं है, पता है। इसके अंदर तो सब कुछ आ गया ना, जो आसमानों में, आसमानों मींस ये नहीं है जो हम ऊपर देख रहे हैं, हम कोई सितारे। अब इतने हम इस दौर के अंदर आ गए हैं, इतने हमारी जो साइंस ने इतनी तरक्की की कि यहां तक पता चल गया कि कितनी और गैलेक्सीज हैं, कितने और सितारे हैं, सैयारे हैं, कितनी और कहकशाएं हैं, ये सब चीज इंसान को पता चल गई। तो अब आप ये नहीं कहेंगे आसमान सिर्फ ये है, अब आप उसकी डेप्थ को समझें और सोचें कि क्या कुछ है आसमान में, और वो सारा किसका है, अल्लाह का। ऐसे नहीं बोलना जैसे कि एक बच्चा बोलता है ये सब कुछ अल्लाह का है, उसको भी पूछ ले, और वो ऐसे ही मैं भी बोलूं, मुझे समझ होनी चाहिए मैं क्या कह रही हूं। सब कुछ अल्लाह ताला की मिल्कियत है, उसने पैदा किया है, उसका हुक्म चलता है सब के ऊपर। कितनी बड़ी बात है ना, जो कुछ जमीन में है, जमीन में क्या क्या है, हर चीज देखें बाहर, कई चीजें हमें नजर आ रही हैं, कई नहीं नजर आ रही, कई चीजें जमीन के नीचे हैं, कई फिजाओं में है, कई छुपी हुई है, कई इतनी छोटी है नजर नहीं आती, कई इतनी बड़ी है समंदरों के अंदर वो नहीं नजर आ रही, कई जमीन के नीचे दबी हुई है, रींग रही है, वो नहीं पता। हमें तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं, कई चीजों को वो अब दिखाते हैं ना कि ये हमने डिस्कवर कर लिया, ये डिस्कवर कर, डिस्कवर मींस ये नहीं कि वो चीज आज पैदा हुई हमें आज पता चली है, पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि इंसान दंग रह जाता है, अच्छा ये भी कोई मखलूक है, ऐसे ऐसे जानवर हैं, ऐसे ऐसे कीड़े हैं, ऐसे ऐसे परिंदे हैं। कभी देखें आप डिस्कवरी चैनल के ऊपर कितनी चीजें दिखाते हैं, तो हर चीज उसकी मिल्कियत है, हर चीज उसके अंडर है, हर चीज पे उसका हुक्म है, कितनी बड़ी बात है ये। हम छोटी सी अपने घर को ही लेके सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज बन गए, कोई एक टाउन का गवर्नर बन जाता है वो सोचता है मैं क्या चीज हूं, कोई वजीर मुशीर बन जाता है तो वो उसकी अकड़ कितनी होती है, और वो रब हर चीज का ही मालिक, हाँ हुक्मरान। वलहुद्दीन वासिबा, और उसी के लिए इतात है दाइमी, दीन उसके लिए ही है, दीन से मुराद क्या है, इतात, इतात उसी के लिए, कब की, वासिबा दाइमी हमेशगी की। ऐसे नहीं है मस्जिद में जाए तो अल्लाह की इतात और मस्जिद से बाहर आए तो कोई पता ही नहीं, ये कौन सी इतात होती है। और फिर कारोबार पे बैठे तो पता ही नहीं कि अल्लाह ताला की बात भी सुनी थी या कुछ बात हमें पता भी है, जिस वक्त हमारी शादियां हो तो फिर तो इतात बिल्कुल ही हम भूल जाते हैं, इतात भी कोई चीज है, दीन भी कोई चीज है। अल्लाह ताला ने फरमाया अफा गैरा दीन इल्लाही यबगून, अल्लाह के अलावा कोई दीन तुम्हें पसंद है वो तुम तलाश करते हो, जबकि आसमान और जमीन तो सारे अल्लाह के फरमा बरदार है, तुम अपनी मर्जी का लाइफ स्टाइल चाहते हो। हमेशगी के लिए इतात अल्लाह ही के लिए है, तो इसका वासिब का देखें सूरह साफात में आते हैं ना, वला हम आदाब वासिब, उनके लिए हमेशगी का आजाब है, तो इसका मतलब होता है हमेशगी, हमेशा उसी की इतात करनी है। तो खालिक की नाफरमानी में किसी की इतात नहीं करनी, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही हो तो आपने इस और किसी और का आपने हुक्म मानना है तो ये नहीं करना। जहां देखना है अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, वहां पे किसी ने भी हुक्म दिया, चाहे वो वालदैन हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बच्चे हैं आपके, चाहे वो कोई भी है, उनकी बात नहीं माननी। जहां टकरा रही है ना बातें, वहां नहीं माननी, चाहे मां बाप ही क्यों ना। बहुत सी औरतें कहती हमारे हस्बैंड को ये नहीं पसंद, तो हस्बैंड को छोड़े, हस्बैंड आपका मालिक है क्या? उसने आपको पैदा किया क्या? वो आपका राजिक है क्या? हाँ, उसकी इताअत करने का जो हुक्म है या उसकी खुशनुदी देखने का जो हुक्म है, वो ये नहीं है कि अल्लाह की खुशनुदी एक तरफ पड़ी हो, खामिंद की बस खुशनुदी देखो। ये खामिंद भी तो अल्लाह ने ही दिया, और वो भी अल्लाह ही का बंदा है। मालिक तो आपका अल्लाह ही है, वो आपका मालिक थोड़ा ही है। लेकिन जहां पे हमने अपनी मर्जी करनी है, वहां पे कहना कि वो हस्बैंड नहीं मानते। तो आपको कभी ये भी परवाह हुई है कि अल्लाह ताला मानता है कि नहीं इस बात को? अगर अल्लाह नहीं मानता इस बात को, तो हमें ज्यादा फिक्र इस चीज की होनी चाहिए कि मेरा मालिक नहीं मानता, या ये होनी चाहिए कि शौहर नहीं मानता। वो मालिक है, मालिक, मैं उसकी गुलाम हूं। फिर उसके बाद उसको कंपैरिजन करना किसी इंसान के साथ, बच्चे नहीं मानते क्या करें? तो बच्चे नहीं मानते ना माने, बच्चों का हुक्म तो मेरी जिंदगी पे नहीं चलना चाहिए, मेरे मालिक का चलना चाहिए ना। मालिक समझाओ कभी तो फिर, है ना। अगर मालिक ही नहीं उसको समझते, तो फिर जो मर्जी करे, फिर हर एक आपका मालिक बन बैठेगा। फिर लोग भी मालिक हैं, बच्चे भी मालिक बन जाएंगे, वो भी सर पे सवार होके नाचेंगे। फिर शौहर भी कहेगा कि तो मेरी माने। तो याद रखिए, मालिक जो है उसकी इताअत लाजिम है हमेशा, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे गैर शादीशुदा हैं, चाहे आपकी खुशी का टाइम है, चाहे गम का टाइम है, चाहे कोई इसकी इस बात की मुखालफत करता है या इसके हामी है, ये आपको लिए मैटर नहीं करना चाहिए। उनकी इताअत तब करेंगे जब वो उसके मुताबिक हुक्म देंगे जैसे मालिक ने हुक्म दिया। जब वो मालिक के हुक्म के खिलाफ हुक्म देते हैं, तो मालिक की बात मान लेंगे, उनकी छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कब्र में नहीं जाना, वो हशर में हमारा जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए इस बात को हमेशा के लिए पल्ले बांध लें, आप सुखी रहेंगे। ये वलाहुद्दीन वासिबा, अल्लाह ताला की इताअत दायमी है। जब आसमान जमीन उसकी इताअत कर रहे हैं, हर चीज उसकी इताअत कर रही है, मैं क्यों ना करूं? हर चीज इताअत का दर्स देती है। अफ़ग़ैर अल्लाह ही तत्तकून, फिर अल्लाह के सिवा किसी और से तुम डरते हो? अल्लाह ताला के सिवा किसी और का तकवा रखते हो? तकवा क्या था, मैंने बताया था आपको, ये तकवा ही तो है कि जो है इंसान ये सोचे कि अल्लाह ताला को कोई ऐसा काम मेरा से गुनाह का ना हो जाए जिससे अल्लाह ताला नाराज हो, और कोई ऐसा काम नेकी का रह ना जाए जिससे उसको राजी करना था, उसके जिसमें रजा है वो नेकी का काम मेरे से रह ना जाए। ये तकवा है, बच बच के चलना तकवा है, डर तकवा है, इसलिए उसको डर कहते हैं कि आपको डर है उसकी नाराजगी का। इसी तरह अलाउद्दीन वासिबा का मतलब ये भी है, फाबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, अल्लाह की इबादत करो खालिस करके, दीन को उसके लिए खालिस करते हैं, खालिस बंदगी उसको चाहिए, सिर्फ उसकी बंदगी। ये नहीं है कि अल्लाह ताला को भी मान रहे हैं और साथ साथ औरों की भी मान रहे हैं, औरों की भी बंदगी शुरू की गई, अल्लाह की इबादत भी कर ली, उस किसी और की इबादत भी कर ली, ये नहीं होगा खालिस। जैसे मैंने कहा कि इसमें ये नहीं है कि हर एक से डरते रहे, एक अल्लाह से डरे बस। अब देखें, जो किसी और को पूजते हैं, कोई आग को पूज रहा है, कोई सांपों को पूज रहा है, कोई किसी और चीज को पूज रहा है, वो असल में उनके भी खौफ होते हैं इन चीजों से कि ये चीजें हमें नुकसान देंगी, इसलिए उनसे डरते हैं। वमा बिकुम मिन नियमतिन फमिन अल्लाह, और तुम्हें क्यों नहीं डरना चाहिए अल्लाह से, और क्यों नहीं तुम्हें उसकी सिर्फ इताअत करनी चाहिए? तुम तो ऊपर से सर से पैर तक तुम्हारे पास जो कोई भी नेमत है, फमिन अल्लाह, तो अल्लाह ही की तरफ से तो है, अल्लाह ने ही तो दी हुई है। सर से पैर तक एक रुआ, रुआ भी हमारा जो है ना, ये रुआ जो होता है ना, ये अल्लाह ताला के एहसानात तले दबा हुआ है, उसके इतने एहसान है हमारे ऊपर, गिन नहीं सकते आप। इन तउद्दू नियमत अल्लाही ला तुहसुहा। तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो ना, गिन नहीं सकते। जो भी कुछ तुम्हें मिला हुआ है, माँ भी को जो भी तुम्हारे पास है, कोई भी नेमत, किसी किस्म की भी नेमत, चाहे वो मादी नेमत है जैसे जो फिजिकल होती है, या मानवी नेमत है जैसे ईमान है या इस्लाम है या आपके अंदर कोई इताअत फरमाबरदारी का जज्बा है या नेकी का कुछ जज्बा है, ये सारी नेमतें हैं ना, सब अल्लाह की तरफ से। कोई नेकी की तौफीक है, ये भी नेमत है जो किसी को मिल जाए। कोई खौफ खुदा, ये भी नेमत है। फमीन अल्लाह की तरफ से। फिर किस तरह आप बन बैठे कि हम ऐसे, मैं ऐसी, मैं ये, मैं वो, सब कुछ तो अल्लाह का ही है। इंसान को अल्लाह ताला ने यहाँ पे दिखा दिया कि वो खाली हाथ है, फकीर है, फकीर ही है ना। और चल एक फकीर जो होता है वो हमारे दरवाजे पे आता है, कम से कम उसके कपड़े तो अपने होते हैं, उसकी आंखें अपनी होती हैं, उसके हाथ पैर अपने होते हैं। वो तो नहीं ना हमारे, तो वो है फकीर, वो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास कितना कुछ उसका अपना होता है। यहाँ पे तो हर चीज में कह दिया कि चाहे वो कुछ भी है, तेरी सांस भी जो है वो भी मीन अल्लाह है। तुम्हारी नजर, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे आजाद जितने भी तुम्हारी बॉडी में काम कर रहे हैं, तुम्हारी एक एक चीज नेमत इनमें है ना, ये नकेरा है। नकेरा के अंदर क्या होता है कि वुसत होती है। इसके माने में कि कोई भी किसी किस्म की भी नेमत, चाहे वो बाहर है चाहे अंदर है हमारे, सब मीन अल्लाह है। अब इसके ऊपर इसे एक इस सारी आयत को भी छोड़ के सिर्फ इतने से टुकड़े को पकड़ लें आप, और पकड़ के बैठ जाएं, आपके दिन गुजर जाएंगे इसके ऊपर गौर फिक्र करने में, तदब्बर करने में, सोचने में, हाय अल्लाह तूने मुझे कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है, जो कुछ मेरे पास है तेरी तरफ से। इसके बाद आप बताएं, एंड ऑफ द डे जब तक आप इसके ऊपर गौर फिक्र करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे कि आपके अंदर झुकाव आएगा अल्लाह ताला के आगे, आपके अंदर फरमा बरदारी का जज्बा आएगा, आपके अंदर शुक्र गुजारी आएगी, आपके दिल में मोहब्बत आएगी, आपके दिल में ये डर आएगा कि मेरा वो रब नाराज ना हो जाए जिसके हाथ में सब कुछ ही है, मेरा सारी कुछ उसने, देखें जो देने वाला है वो अगर ले ले वापस कोई चीज, आप कह सकते हैं कि आप नहीं ले सकते, ये क्यों इसने मुझसे ले ली, नहीं कह सकते ना। उसकी थी, मीन अल्लाह का मतलब है उसकी थी, उसने कभी भी वापस ले ले, औलाद में से कोई वापस ले ले, शौहर को वापस ले ले, वालदैन में से किसी को उठा ले, या हमारे आजा में से कोई ले ले, क्या कह सकते हैं कुछ? इसका मतलब सब कुछ मांगे तांगे का तुम यूज कर रहे हो, कुछ तुम्हारा नहीं है। जो ऐसा फकीर हो जिसका अपना वजूद भी उसका ना हो, क्या तस्वीर बनती है आपके जहन में उसकी? मोहताज, बिल्कुल मोहताज। जो मोहताज है वो क्या अपनी कभी भी अपनी नजर उठा सकता है उसके आगे? जो मुनाइम है, जो नेमत देने वाला है, जो उसको सब अता करने वाला है, क्या उसके आगे कुछ बोल सकता है? क्या वो उसको कोई बात सुना सकता है शिकायत की, या क्या वो उससे गिले कर सकता है, ऐसे तूने क्यों किया, वैसे तूने, क्या वो उसकी जुबान में इतनी ताकत हो सकती है कि वो ये बोले? जिसको ये पता हो, वमा बिकुम मिन नियमतिन फमिन अल्लाह, अब आप बताएं उसके बाद हमारा क्या रह जाता है, मेरे हाथ में क्या है? खाली, बिल्कुल। इंसान को तो लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी हस्ती क्या है? एक फकीर भी रिच है, रिच है वो, यकीन करें वो रिच है, उसके पास कुछ ना कुछ है। मैं उसको फकीर कहती हूं ना, और मैं खुद कितनी बड़ी फकीर हूं अल्लाह की, कितनी बड़ी फकीर हूं। मुझे वो फकीर लगता है जिसके पास कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ उसके पास पैसे नहीं है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो हर चीज में फकीर। क्यों नहीं ये एहसास हमारे अंदर, क्यों नहीं ये बात हमारे अंदर? और वैसे हमें पूछ लें तो हम कहेंगे हाँ, सब कुछ अल्लाह ही का ही, हाजा मिन फदली रब्बी, लेकिन ये यकीन नहीं है, बिलीव में ये यकीन नहीं है। यकीन डालने की जरूरत है, ये यकीन सीखने की जरूरत है, इसको दोहराने की जरूरत है, इसके ऊपर बहुत गौर की जरूरत है, इसको सोचने की जरूरत है। एक एक चीज पकड़ के देखे, अपनी उंगली को पकड़े, अपने नाखून को पकड़े, अपने एक एक बाल को पकड़े, एक एक बाल मीनल्लाह है, अल्लाह तूने दिया हुआ, मैं तो किसी चीज की भी मालिक नहीं। और है अल्लाह, अगर मैं बोल सकती हूँ तो ये बोल भी तेरे दिए, मैं सोच सकती हूँ तो ये सोच भी तूने दिए। ए अल्लाह, अगर मैं ये पढ़ भी रही हूं ना और तूने मुझे यहां तक भी सिखा दिया तो ये भी तेरी तरफ से। नथिंग नथिंग अल्लाह अकबर, आई एम जस्ट स्पीचलेस, इसके बाद मैं क्या पढ़ा सकती हूँ। फमीन अल्लाह वमा बिकुम मिन नेमतिन फमीन अल्लाह, हाईलाइट कर लें इसको, हाईलाइट कर लें इसको। अफ़ग़ैर अल्लाह ही तत्तकून, पूछा करें अपने आप से, जब कोई आपको कहे ये मानो मेरी बात, या कोई कहता भी नहीं है, हम तो वैसे ही झुके रहते हैं हर वक्त ही, हाँ, क्योंकि हमें डर होता है ना कि ये नाराज ना हो जाए, कहीं हमसे मुंह ना फेर ले, तो उस वक्त अपने आप को सुनाए अफ़ग़ैर अल्लाह ही तत्तकून, जब अल्लाह ताला के लिए कोई एतराज आए तो कहें वमा बिकुम मिन नियमतिन फमिन अल्लाह। इंसान शर्म कर, शर्म। एक नौकर भी कहता है कि जी इनके घर का पानी हमने पिया, इस घर का नमक मैंने खाया, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक आपके घर से तनख्वाह लेता है तो कहता है मैंने नमक हरामी नहीं करनी। और इंसान तू अपने मालिक की कितनी नमक हरामी करता है कि सब कुछ लेके भी तू उसके आगे नहीं झुकता, तू उसके ऊपर बातें बनाता है, तू कहता है मैं उसको मानता ही नहीं। तुझे बहुत अपनी अकल समझ के ऊपर नाज होता है कि तुझे लगता है कि जो उसके हुक्म है वो तो मेरे लिए काबिले अमल ही नहीं। तुझे ये लगता है कि उसको तो नहीं पता था, मुझे ही सारा पता है, इस जमाने में क्या होना था, मैं ज्यादा अकलमंद हूं, मुझे ज्यादा समझ है कि कैसे चलना है जमाने में। नाऊज़ु बिल्लाह कि उसको नहीं पता था। एक फकीर तो बोल ही कैसे सकता है, उसकी तो जो अपनी औकात समझ ले ना, उसकी तो बोलती बंद हो गई, फिर औकात नहीं समझी हमने अपनी। ये आयत हमें हमारी औकात से दिखा रही है और कायनात दिखा रही है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आप ना इन आयत में खो जाएं, इमेजिन कि खल्क सारी की सारी उस अल्लाह के आगे झुकी भी है, उनके वो उनके साए उसको सजदे कर रहे हैं, और एक ये इंसान ना शुक्रे ना कदरे, तुझे अल्लाह की कदर ही ना आई, तुझसे तो अच्छे वो पत्थर है जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कंकर भी अल्लाह की तस्बीह करते, खाने की तस्बीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाई, खाना भी तस्बीह करता है, उससे अच्छे तो पत्थर हजर है, शजर है, जिन जो अल्लाह के आगे झुकने वाले तो है। ए नादान इंसान, तुझे ये भी ना आया, तुझे ये सबक भी नहीं समझ आया कि तेरा तो कुछ भी नहीं है, तू तो सारा का सारा मांगे तांगे का, फिर तू जुबान खोलता, तुझे शर्म नहीं आती। सुम्मा इज़ा मस्सकुम तुर्रु, फिर जब पहुंचती है तुमको तकलीफ, सही नहीं तजारून, फिर हाल ये है, इतनी सी औकात है इस इंसान की कि इसका हाल ये है कि बस कुछ जरा तकलीफ अगर पहुंचती है तो फिर चीखे मारने लगता है, फिर गिड़गिड़ाने लगता है, फिर फरियादें करने लगता है, आए बड़ी मुसीबत आ गई, हाय ये हो गया, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरा तो खाना खराब हो गया, ये हो गया, फिर टकरे मारता फिरता, इतनी सी औकात है। फिर वो कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता, तो जब उसके ऊपर तकलीफ आती तब वो भी कहता है ओ माई गॉड, वो गॉड कहाँ से आ गया, तुम तो कहते को खुदा ही नहीं, फिर तो उसको भी खुदा याद आ जाता है। और तजारून है ना, जब वैशी जानवर किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो जो चीखे मारते हैं ना उसको जुहार कहते हैं, नहीं मेरे इंसान इस तरह बिलबलाता है, इस तरह चीखता है, जब पहले नहीं उसको खुदा याद आता, पहले भूला होता है, लेकिन देखो तुम तो तुम्हारा तो हाल ये है। जस्ट अपने आप को मतलब ये सारी आयतें ना मेरे को बताने की नहीं है, जस्ट आप इनके अंदर अपने आप को महसूस करें, एक आईना है, इसके अंदर देखें, इसके अंदर डूब जाए कि सब कुछ उसका दिया हुआ है। फिर एक इंसान बड़ी बड़के मारता पीता है, जरा सी उसको बीमारी ही आ जाती है, और डॉक्टर ने कह दी जी कैंसर हो गया इसको। ओ फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद हमारी हालत क्या हो जाती, किसी ने बॉस ने कह दिया तेरी जॉब खत्म हो गई, बच्चे को कुछ हो गया, किसी और तरफ से परेशानी आ गई। फिर देखो फिर क्या इंसान करता है, फिर वो कैसे कराता है, फिर कैसे पुकारता है अल्लाह को, फिर उसको झुकना आ जाता है। बस तुम इतनी सी चीज की मारते, अब तुम्हें झुकना आ गया ना, पहले क्यों नहीं झुकते। सुमाइजा कशफा दुर्रा, फिर इतना ना शुक्र है कि फिर जब वो हटा देता है तकलीफ को अनकुम तुमसे, फिर क्या करते हो, किजा फरीक मिनकुम बि रब्बी हम युशरिकून, एक फरीक उसी वक्त यकायक एक ग्रोह तुम में से अपने रब के साथ शिर्क करने लगता। फिर उसको और कोई याद आ जाते हैं, जी हमारे फलाने हैं, बस जी जो उनकी करामते हैं, बस जी उनकी देन है, जी हमें तो ये मिल रहा है उन्हीं की वजह से मिल रहा है, नहीं जी ये है, उसके ऊपर चादर चढ़ाओ, उधर जाके देख दो, उन्होंने से काम हुआ है हमारा, वहीं से बना है हमारा काम। पहले तो तुम अल्लाह से फरियादे कर रहे थे, अब तुम्हें सारे याद आ गए। कैसी बात है कि लेते अल्लाह का दिया हुआ, खाते उसका दिया हुआ, शुक्र किसी और का करते हो। यकीन करें हमें, हम आगे ये बात आएगी भी, हम किसी के साथ अच्छा करें ना, किसी के ऊपर एहसान करें, वो जाके हमारे किसी और को, हमारे किसी नौकर को सोच ले। अब इतनी मिसाल ऐसे दी नहीं जा सकती ना, क्योंकि अल्लाह ताला और बंदे का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अब समझ ले, हमारे नौकर को जाके इतना शुक्रिया करता है, इसके आगे बिच बिच आते तो क्या हमें महसूस नहीं होगा कि मैं इसके लिए इतनी वो करी, और ये मेरे नौकरों को जाके शुक्रिया कर रहा है, उनके आगे झुक रहा है, उनको तोहफे दे रहा है, और उनका एहसानमंद हो रहा है। ये पागल है, मैंने इसके साथ भलाई की और ये उनको जाके कह रहा है। सारी मखलूक अल्लाह की नौकर है, गुलाम है, उसकी मखलूक है, वो खालिक है, वो एहसान करता है, और इंसान जाके दूसरों के दरों पे जाके उनके सजदे करने लगता है, उनको खुदाई का दर्जा दे देता है। लियकफुरु बिमा अतैनाहुम, ताकि वो ना शुक्री करें इसकी जो हमने उनको अता किया, इसलिए जाके शिर्क करने, ताकि वो ना शुक्री करें अल्लाह की। पता मत आओ, तो छोड़ दो इनको, जो फायदे उठा रहे हैं करने दो इनको, फंसा हुआ तालमून, इनको जल्दी पता चल जाए। देखिए ये पता चलने में ना ज्यादा देर नहीं लगनी, इसलिए कि इधर आंख बंद होनी है ना, उधर सारा कुछ पता चल रहा है। ये जो आज नहीं समझ आता ना, वो मुझे तो समझ ही नहीं आता, और जो आज यकीन नहीं आता ना, वो यकीन भी आ जाना, समझ भी आ जानी, बड़ी ठीक ठाक समझ आएगी। इतनी सी देर है बस, आंख बंद क्या होनी, जो फरिश्ते ही नजर आ जाने समझे, बहुत अच्छी तरह आ जाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये भी समझ आ जाएगा कि जिंदगी में किस चीज को प्रायोरिटी देनी थी, ये भी समझ आ जाएगा कि देने वाला कौन है, ये भी समझ आ जाएगा कि अल्लाह की फरमाबरदारी कितनी करनी थी, ये भी समझ आ जाएगा कि नेकियां कितनी करनी थी, गुनाहों से कितना बचना था, ये भी समझ आ जाएगा कि कोई भी नहीं है जो कि कुछ कर सकता है मेरा नफा और नुकसान। जैसे आप ने फरमाया था ना इब्न अब्बास वाली हदीस में, कि अगर सब भी इकट्ठे हो जाएं और तेरा कुछ तुझे कुछ नफा पहुंचाना चाहिए, तुझे नफा नहीं पहुंचा सकते, मगर वो जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया, और सब पकड़ के सब कोशिश करें नुकसान करने की, तेरा नुकसान नहीं कोई कर सकते मगर जो अल्लाह ताला ने चाहे। अल्लाह माने अलीमा आता ही वाला मुआती अलीमा मनात, अल्लाह ताला जिसको अता करना चाहे कोई रोक नहीं सकता, जिसको देना चाहे कोई मना नहीं कर सकता, सब समझ आ जाएगा। आज सिर्फ बोलते हैं ना, ये समझ तब सारा आ जाएगा। कुछ कुछ किस्मत होते हैं उनको इस दुनिया में समझ आ जाती है। या जालूना माला या आलमूना नसीबा में मारा जखना हम, ये सब चीजें करते थे ना, तो उनके शिर्क को भी, उनके जो जो वो गलत काम करते थे, शिर्क के काम करते थे, उसको भी हाईलाइट करके यहाँ पे बताया गया और उसके जवाब दिए गए। ठीक है इनको छोड़ दो, ये फायदे उठाते हैं इस दुनिया में, फायदे उठाते रहे, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए आप सोचते हैं ना, अगर ये इतने गलत काम कर रहे होते, ये मुशरिक जो है बुतों को पूजते हैं, और ये जो ईसाई ईसाइयत में अल्लाह ताला के साथ इतना शिर्क कर रहे, अगर ये इतना ही गलत कर रहे तो फिर इतनी इतनी तरक्कियां कैसे कर ले, फिर तो मुसलमानों को तरक्कियां करनी चाहिए थी। इसलिए कि अल्लाह ताला के लिए दुनिया जो है मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर सूरह ज़ुख़रुफ़ में आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला तो चाहता तो अगर ये मुसलमानों का ईमान वालों का खतरा ना होता कि यही किसी डाउट में पड़ जाएंगे, तो अल्लाह ताला इनको इनके छते सोने चांदी की बना देता, इनको इतनी दुनिया में इतनी दुनिया इनको देता, क्योंकि उसको परवाह नहीं। अब जैसे गार्बेज है, अब गार्बेज को आप कहें कि ओ गार्बेज ना कोई ले जाए, कभी कहेंगे आप गार्बेज की परवाह भी नहीं करते, कोई भी लेके चला जाए। अल्लाह ताला की नजदीक ये दुनिया ये मच्छर के भी पार के भी बराबर नहीं है। इस गार्बेज कुछ भी नहीं है ये अल्लाह ताला के सामने। ये गार्बेज की आपको मिसाल दे के मैंने बताया है कि यानी जो चीज हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, बहुत घटिया छोटी हकीर चीज है, तो वो हम गार्बेज को समझते हैं, तो सुई की भी वैल्यू उससे ज्यादा होगी। तो अल्लाह ताला के मच्छर के पार क्या होता है? तो वो अल्लाह ताला के साथ ये वह यजालुना वो बना लेते उसके लिए, ला यालमुना नसीबन मिम्मा रज़क़नाहुम, जो नहीं वो जानते एक हिस्सा उसमें से जो रिस्क दिया हमने उनको, यानी अपने बुतों का भी एक हिस्सा मुकर्रर करते, अपने शरीकों का भी। आज तक भी मुझे याद है वहां पे वो कहा करते, एक दिन उर्स होता था हमारे शहर में किसी बुजुर्ग का, तो वो उस दिन आपको दूध नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि वो सारे जो दूध वाले थे ना वो वहां जाके देते थे, कहते कि अगर हम यहाँ पे नहीं दूध देंगे तो हमारी तो भैंसे दूध देना बंद कर देंगी, दूध खुश्क हो जाएगा, तो हमें वो उस दरबार पे जाके उस मिजार पे जाके हमें दूध देना है, क्योंकि ये फिर खुश होंगे, इनसे ही तो हमें मिलता है, जो भी उनका नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहती, जो भी वो बुजुर्ग थे ये इनके तो फैल ही तो हमें मिलता है, तो हमारी तो दूध खुश्क हो जाएंगे जानवरों के अगर हमने ना यहाँ पे दिए। तो वो भी कहते थे कि इन बुतों के नाम पे तो हमने देना है, ला इल्मी में उनको पता ही नहीं है। बात सारी वही आ गई ना इल्म की, आज की सारी गुफ्तगू जो है वो ये इल्म कितना जरूरी है कि इंसान को पता हो, और वो इल्म वाला नहीं जो इंफॉर्मेशन है, वो इल्म जो दिल में रास है वो, ये नहीं थे। हालांकि वो अल्लाह को मानते थे, ऐसे नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह ताला का भी हिस्सा निकालते थे, हम सूरह अनाम में पढ़ रहे हैं, अल्लाह का भी हिस्सा निकालते थे, साथ बुतों का भी निकाल देते थे अपने रिस्क से, और अगर कोई कमी हो रही थी तो अल्लाह के हिस्से में कमी कर लेते थे, बुतों वाला हिस्सा कम ना, इन्हीं से तो मिलता है हमें। आज भी मुसलमान कहते हैं इन्हीं से तो मिलता है, इसी के इन्हीं के नाम का तो मिलता है, इन्हीं के नाम का तो खाते हैं हम, वो जो के ला यालमून का मतलब ये भी है कि उन बुतों को खबर भी नहीं है जिनके नाम का हिस्सा निकाल रहे हैं, ला यालमून नसीबन, पर ये भी कि ये नहीं जानते, ये भी एक है। अल्लाह ही तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, अल्लाह की कसम अलबत्ता तुम जरूर पूछे जाओगे उस बारे में जो तुम घड़ते थे, जो खुद ही घड़ा हुआ है, खुद ही सारी बातें बनाई हुई है, इनसे पूछा जाएगा, इनसे के जिनकी तुम इबादत करते थे उनके बारे में पूछा जाएगा, तुमने खुद ही झूठ घड़ लिया था कि ये तुम्हें देते हैं, ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे, ये हमारे सिफारशी हैं, ये हमारी बिगड़ी बनाएंगे, ये सारे झूठ है। वह ये जालून लिल्लाहिल बनात, और वो अल्लाह के लिए बनाते हैं बेटियां, सुबहाना वो तो पाक है इस सब चीजों से, औलाद से, वाला हम यश्ताहून, और लिए उनके है जो वो ख्वाहिश रखते हैं, यानी उनके लिए अपने लिए वो है जो वो ख्वाहिश रखते हैं, अपने लिए क्या है बेटे, और अल्लाह के लिए क्या बता दिया कि उसकी बेटियां, कौन है बेटियां, फरिश्ते उसकी बेटियां, नऊजु बिल्ला, अल्लाह तला तो इससे पाक है, खुद अपने लिए उसको नहीं पसंद करते, अपने लिए तो नहीं कहते हमारे लिए बेटियां, अपने लिए तो कहते हैं बेटे हो, हमेशा ख्वाहिश बेटों की होती, चाहे चार बेटे 10 बेटे भी हो जाए, और अल्लाह ताला को वो दे दिया, ये नहीं मतलब है कि अल्लाह के लिए बेटियां क्योंकि बेटे कर देंगे तो ठीक है, ये नहीं है, मगर इससे ये पता चलता है कि इनके लिए इनके जहन में अल्लाह ताला की क्या कदर है, क्या वैल्यू देते हैं, क्या इन्होंने अंदाजा लगाया अल्लाह ताला का, यानी जो खुद चीज पसंद नहीं वो अल्लाह के नाम लगा दे, इससे उनकी जहनीयत पता चलती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह ताला को बेटियां नहीं पसंद, उसको बेटे पसंद है, अगर उसको बेटे अल्लाह नाउज बिल्ला फिर बेटा होता तो फिर ईसाइयों को क्यों रद्द किया जाता, तो ना उसको बेटा चाहिए ना बेटी, लेकिन सिर्फ इतनी इनकी बात बताई जा रही है कि देखो खुद अपने लिए जिस चीज को नहीं पसंद करते वो भी लेके तो अल्लाह के नाम लगा दे, उसकी बेटियां तो खुद अपने लिए क्या करते हैं। वाइजा बुशीरा आहद हूं बिल उनसा, जब खुद को खुशखबरी दी जाती, देखिए यहाँ पे बेटी की खुशखबरी कहा गया, अल्लाह ताला ने इसको खुशखबरी कहा है, हमारे लिए क्या होती है हमारे माशरे में किसी की बेटी हो जाए तो कहते हैं हाँ ये बेटी के ऊपर मिठाई बांट रहा है, मतलब लोग हैरान होते हैं, बेटे के ऊपर तो लड्डू बांटते हुए देखा है लोगों को, लेकिन अगर कोई बेटी के ऊपर किसी का हो जाए ना तो लोग हैरान होते हैं, हाय बेटी के ऊपर मिठाई मिठाई बांट, और कोई मुबारकबाद देने की गलती ना करे उनको, अगर उनकी बेटी हो गई, बेटा हो तो मुबारक दे दे। वो जो जो हॉस्पिटल वाली भी नर्स और जो दाइयां और जो ये सब होती हैं सफाई वालियां, वो भी बेटा हो तो फिर उसकी मुबारकबाद भी देती हैं, फिर कहती हैं मम्मी बेटा हुआ आपका तो मम्मी कुछ दे, उनको पता है बेटी हुई है तो फिर तो चुप ही रहो। मैंने फिर तो बुरी चीज हो गई, इसका क्या, अल्लाह ताला जिसको खुशखबरी फरमा रहा है, खुशखबरी पे तो खुश होना चाहिए, खुशखबरी पे तो मिठाई बांटनी चाहिए, खुशखबरी के ऊपर तो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हमारे हाल उलट है, हमारे लिए ये बदखबरी है, पहले तो ये बात सुन ले। तो ये अल्लाह ताला उसको बुशरा फरमाते हैं, तो इजा बुशीरा अहदुहुम बिल उनसा, इनमें से एक को खुशखबरी दी जाती लड़की की, तो इसका हाल क्या होता है। अब वो इसको खुशखबरी थोड़ी समझते, जल्ला वजहू मुसवदा, तो उसका चेहरा ही काला हो जाता है। चेहरा कब काला हो जाता है, जब इंसान गम में होता है, वह कदीम और वो गम के घूंट भरता है, हाय फिर बेटी हो गई। चलो एक आध तो फिर भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, एक दो हो गई, हाय जब तीसरी हो गई तो लोगों को रोते देखा है बाकायदा कि हाय फिर बेटी। अजीम होता है कि अंदर का सांस अंदर तो बाहर का बाहर, इंसान अंदर घुट घुट नहीं अपने घूंट पी ले गम का, वो वाली हालत, इतना उसका गम के मारे हाल हो जाता है कि आवाज भी नहीं निकलती, बस अंदर ही अंदर रह जाता है उसका गम। अल्लाह माफ करे, जिहालत सिर्फ उस वक्त नहीं थी, ये तो मुशरिकीन मक्का की हालत थी, आज भी वैसी ही जिहालत है। रोती हुई औरत हॉस्पिटल से घर आती है, और वो घर वाले भी ऐसे अफसरदा हो जाते हैं जैसे इनका घर में कोई खुशी नहीं आई, कोई गम का घर है ये। और वो सास ससुर और वो सारे ही गम के अंदर चले जाते हैं, हाय अब। और वो बहू जो है जो बेटी लेकर आई है, वो भी एक नहुसत करार दे दी जाती है, क्योंकि ये बेटियां ही पैदा कर रही है। तो कहाँ जमाना है, जाहिलियत खत्म हुआ, आप कहते हैं खत्म हो गया, हम 21वीं सदी में दाखिल हो गए, ये तो हम अभी तक जमाना जाहिलियत में ही रह रहे हैं। फिर कहते नहीं क्या करें, इनके नसीबों से डर लगता है, मतलब नसीब तो अल्लाह ने बनाया, नसीब तो लड़के का भी बुरा हो सकता है, लड़के की आपको गारंटी है इसका अच्छा ही होगा। या तवारा मिन अल कौमी मिन सुइन मा बुशीरा भी। अब देखिए दोबारा खुशखबरी इसको कहा, तो दो दफा यहाँ पे खुशखबरी का ही लफ्ज आया कि छुपता फिरता है अपनी कौम से बुराई की वजह से, कि बुराई की से कि एक बुरी चीज आ गई है, जो जो खुशखबरी दिया गया उसके साथ वो छुपता फिरता है कि ये क्या एक बुरी यानी बुरी चीज मुझे मिल गई। लोग कहेंगे देखो फलां की बेटी हुई है, अल्लाह ताला के हाँ इसका मतलब है कि ये बुरी चीज नहीं है, जब भी तो उसको खुशखबरी कहा गया, अगर बुरी चीज होती तो क्यों खुशखबरी कहा जाता। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी बेटी नहीं उसका कोई हमदर्द नहीं, इतनी बेटी को अहमियत दी गई। लेकिन उस दौर में और आज के भी दौर में बेटियों की जो अहमियत है वो नहीं है जो इस्लाम ने दी है, और ये अच्छे भले समझदार लोगों का भी यही हाल है। अयुम्सिकुहु अला हूनिन, और वो सोचता क्या है कि क्या इसको लेके बैठा रहूं, इसको पकड़ के लिए रखूं जिल्लत के साथ, अब इसमें तो जिल्लत ही है ना, अब इस ह्यूमिलेशन के साथ इसके साथ जिंदगी गुजारूं, अम या दुसू फिर तुराब, या इसको दबाई दूं मट्टी में। अलासा अमा या कुमून, खबरदार कितना बुरा है जो वो फैसला कर रहे हैं, इतने बुरे ये फैसले करते हैं जो ये ऐसे देखे आप बैठा सोच रहा है, सोच विचार में लगा हुआ है कि अब करूं तो इसका करूं क्या मैं। देखिए इंसान अपनी ही औलाद को किस तरह से वो मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसको खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये हाल होता था उस वक्त के, जब किसी औरत के बच्चा पैदा होने लगता था तो उसकी चारपाई के नीचे ही गड़ा खोद देते थे कि अगर लड़की हुई ना तो फौरन इसी के अंदर दबा दो, कोई जरूरत नहीं इसको जिंदा रखने की। मैं हैरान हूं जिस मजहब ने औरत को जिंदा रहने का हक दिया, यानी आपकी जिंदगी ही पॉसिबल नहीं थी, जिस मजहब ने आपको जिंदा रहने का हक दिया, सबसे बड़ा तो हक यही है ना, उसी को कहते हैं ये तो औरतों के खिलाफ है इस्लाम में चीजें, मर्दों की बातें की गई हैं। हाँ आधी गवाही हमारी करी गई, हाँ हमारी दियत पूरी हमारी नहीं है आधी है, ये सोचो तुम्हें आधी गवाही का कह के तुम्हें तो इस कोर्ट कचहरियों के चक्करों से बचा लिया गया, वरना तो तुम कोर्ट कचहरियों में घूमती रहती सारा वक्त। और ये बातें करके ना दीन से मुतनफिर किया जाता है। दियत भी आधी है, इसलिए कि देखे जो दियत किसको मिलनी है, ये औरत की कीमत थोड़ा ही है, और जो कातिल है उसको तो कत्ल किया जाएगा। अगर दियत होगी तो औरत की आधी, मर्द की पूरी। मर्द की दियत किसको मिलती है? औरत को, उसको उनके बुरसा को। तो क्या उसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? उसको तो फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली उसको वो एक बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाती है जब ये और नहीं होता। फिर इतनी इसको इज्जत दी गई, इतना बुलंद मुकाम दिया गया कि इसको घर बैठ के खिलाओ। इसको अगर बेटी है या माँ है या बीवी है, जिस रोल में भी है, उसको विरासत दिलाई। पहले बाप उसका कफील होगा, फिर शौहर, फिर बेटे की जिम्मेदारी है, और बाज जगह पे भाई की फिर जिम्मेदारी आ जाती, बेटा नहीं है तो। जिसकी जिम्मेदारी सबने उठा ली, इसको तो फूलों की तरह उठा लिया। हजरत उमर कहते थे ना कि ये मदीना आके हमारी औरतों को क्या हो गया कि ये हमारे सामने बोलने लगी है। तो उनकी बीवी ने कहा कि सबर करें जरा, जाके अपनी बेटी का तो हाल देख लें, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारा सारा दिन रूठी रहती है। तो हजरत उमर गुस्से में भरे हुए गए बेटी के घर, पता किया तो वाकई ऐसी बात होती थी। तो हजरत हफ्सा फरमाती है कि हाँ, ये तो हमारा आपस का मामला है, ये वो माशरा था। आप आज के साथ कंपेयर ना करें, ये वो माशरा था जिसमें औरत को जीने का हक भी नहीं था। और आज से 100-200 साल पहले की भी बातें उठा के देख लेंगे, वहां पे क्या हाल होते थे औरतों के साथ। अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती थी, अपना नाम नहीं रख सकती। ये जी यूरोप के अंदर ही औरतों के ये हाल थे, इसीलिए तो इतना दबाया। तो आप फिर बिल्कुल ही फट के, बिल्कुल ही आजादी के ऊपर आ गए, ऐसी आजादी के फिर सबको तहस नहस कर दिए, सारी अखलाकियात और सब चीजें पीछे कर दी। इतना दबाया गया, इनकी कोई हैसियत नहीं थी औरत की। तो इस्लाम ने तो हथेली का छाला बनाया, इसको विरासत में हिस्से दिए हैं, इसको हकूक पूरे दिए हैं, इसको कहीं कमी नहीं है। आप एक सुभान अल्लाह कहें और आपके शौहर सुभान अल्लाह कहें, दोनों को एक बराबर रिवॉर्ड है। ये नहीं है कि आपका काम है, औरत का आधा रिवॉर्ड है। अगर इसमें आधा किया जाता फिर भी आप कहते गवाही क्यों मेरी आधी करती? ये क्या बातें हैं? ये कोई अकल की बात है? ये समझ की बात है? बताएं, अगर नमाज का कहा जाता, रोजे का कहा जाता, आदमी रोजा रखेगा इसको इतना अजर है, और औरत रखेगी इतना अजर है, आधा इसको दिया जाएगा, फिर भी समझ आती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एक गवाही को लेके तो उसी को नशर किए जाना। हालांकि देखे कोर्ट कचहरियों के चक्कर आसान नहीं होते, फिर गवाहियों के पीछे लोग दुश्मन बन जाते हैं, उनके पीछे करते हैं। मर्द तो ये चीज उठा सकते, औरत कैसे अफोर्ड कर सकती थी? जिसके खिलाफ गवाही दे दो वो ही दुश्मन। बल्कि अल्लाह ताला ने इसको प्रोटेक्शन दी है, इसके ऊपर एक मर्द को रखा है ताकि वो इसकी जिम्मेदारी उठाए। अब हमने उलट कर दिया इस निजाम को, तो क्या करें? लेकिन वरना औरत की माल उसका अपना है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो माल कमाती भी है, हजरत खदीजा तिजारत करती थी, तो उसका माल है, मर्द उसमें से नहीं ले सकता। हाँ, मर्द का काम है उसके ऊपर खर्च करें, तो और क्या चाहिए? जहेज औरत को नहीं देना है, वो मर्द को देना है उसको मेहर, तो वो उसको लेकर आएगा। अब हम उलट कर ले और हिंदुओं के उस पर चलने लगे, तो अब हमारी अपनी गलती है फिर। ये इस्लाम का इसमें क्या कसूर? बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बेटियों के जरिए आजमाया गया, यानी उसकी बेटियां हो गई और उसने उनसे हुस्ने सलूक किया, तो वो बेटियां उसके लिए जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी। और फरमाया, जिसकी दो बेटियां हैं, यहां तक कि वो उनकी अच्छी खबरगिरी करता है, परवरिश करता है, तो फरमाया कि कयामत के दिन वो और मैं ऐसे होंगे, अपनी दोनों उंगलियां मिला के बताएं। और ये वो माशरा था जहां पे जीने का हक नहीं था। उस माशरे की बात हो रही है, दारमी में वो रिवायत आती है कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आके कहा कि मेरी एक बेटी थी जिसको मैं बुलाता था तो मेरे पास दौड़ी आती थी, एक दिन मेरे बुलाने पे खुशी खुशी दौड़ी आई, मैं आगे बढ़ा वो मेरे पीछे चलती गई, मैं फिर और आगे बढ़ता गया वो मेरे पीछे आती गई। और दूसरी रिवायत में आता है कि मैंने अपनी बीवी को कहा कि इसको जरा खूबसूरत सा तैयार कर दो, तो फिर मैं उसको लेके इस तरह से गया और बहुत दूर दराज ले गया जहां पे गहरा कुआं था। तो वो मेरे पीछे पीछे आती जा रही थी। जब वो कुएं के करीब पहुंची तो मैंने उसका हाथ पकड़ के कुएं में उसको धकेल दिया। वो अब्बा अब्बा कहती रही और यही उसकी आखिरी पुकार थी। अल्लाह अकबर। और उस आदमी ने कहा, मुझे उसकी जब भी ये बात याद आती है मुझे किसी चीज में सुकून नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ये बात सुन के रोने लगे। एक सहाबी ने मलामत की कि तुमने आपसे सलम को गमगीन कर दिया। आपने फरमाया इसको छोड़ दो, जो मुसीबत इस पे पड़ी है ये उसका इलाज पूछने आया। फिर फरमाया कि फिर बताओ। फिर से उस शख्स ने वो बात सुनाई या आप फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोने लगे कि आपकी दाढ़ी मुबारक सारी आंसुओं से भीग गई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, जमाना जाहिलियत के जो भी गुनाह होते हैं इस्लाम उनको खत्म कर देता है, तो तुम अब जाके नेकियां करो। इसी तरह बनू तमीम के अंदर ये बहुत रिवाज था कि वो तो इतनी बच्चियां जहां पैदा होती थी उनको मार देते थे। तो उनका सरदार था कैस बिन आसिम, उसने आके बताया कि मैंने 8 बेटियों को जिंदा दफन किया। तो आपसे सर ने फरमाया हर बेटी के बदले एक गुलाम आजाद को। उन्होंने कहा मेरे पास गुलाम तो नहीं है, ऊंट है। तो आपने फरमाया हर बेटी के बदले एक ऊंट को जिबा करो। बास ठीक है, उनमें ऐसे भी थे कि जो लोगों की बेटियां लेकर फिर उनको जो है ना जाके पालते थे और फिर उनको बड़ा करते थे, फिर उनकी परवरिश करते थे। ऐसे खुदा तरस भी थे, लेकिन सारे ऐसे नहीं थे। ज्यादातर ऐसे थे जो गड़े खोद के फेंक देते थे, अंदर जिंदा ही मट्टी में डाल देते थे, ताकि वो मर जाती थी चीखे मारती मारती। जाहिर है ये इतनी तो बच्ची होगी कि भागती भी आ रही थी। बाज पहाड़ की चोटी से ले जाके फेंक देते थे, बाज ड्राउन कर देते थे, गर्क कर देते थे पानी। तो इनके ये इकदाम बाज दफा इसलिए होते थे गैरत के नाम पे कि बेटी है मेरी, बेटी कल को किसी की बीवी बनेगी तो मैं उसके सामने नीचा हो जाऊंगा। बाज दफा फकरो फाके के खौफ से कि इसने मेरा उसे को तो खाना ही है, ये तो मुझे कोई हेल्प थोड़ी कर सकती, बेटा तो बाजू बनेगा। इतनी वो नफरत करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इसकी अहमियत बताई और इसके लिए कितना बड़ा इंसेंटिव दिया। फरमाया तुम पर माओ की नाफरमानी हराम अल्लाह ताला ने कर दी और बेटियों को कत्ल करना हराम कर दिया। जहां वालदैन भी कातिल हो जाएं, वहां रब है जो रहमान और रहीम है और उसी का भेजा हुआ यह दीन है। फिर ये औरतें कैसे ये बात करती हैं कि इस दीन के अंदर हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे ऊपर ज्यादती की गई है। जिस रब ने तुम्हें जीने का हक दिया तो तुम्हें जीने भी नहीं देते थे, तुम उसी दीन के खिलाफ खड़ी हो गई। तभी तो मेरे हजरत हमजा की जो यतीम बच्ची जब शहीद हो गए थे, यतीम बच्ची थी उमामा, जब आपसे सलाम उम्र कजा के लिए गए तो फिर वो चचा चचा कहती दौड़ी आई, तो हर वो आगे आ रहा है कि मुझे दे दे ये बच्ची। हजरत अली फरमा रहे मुझे दे, हजरत जाफर फरमा रहे मुझे दे, हजरत जैद फरमाते हैं कि मुझे दे दे ये बच्ची। क्यों इतनी डिमांड हो गई बच्चियों की? हम तो पहले जिंदा दरगोर करते थे। तो और देखें आप हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास एक मिस्कीन औरत आई अपनी 2 बेटियों को उठाए, तो उन्होंने उनको 3 खजूरें दे दी। उसने एक बेटी को दे दी, एक दूसरी को दे दी। अब बच्चियों ने जल्दी जल्दी खजूर अपनी खा के तो वो माँ की खजूर की तरफ देखने शुरू की। माँ ने अभी खाई नहीं थी, उसने उस जो अपनी खजूर थी उसके भी 2 टुकड़े करके आधी इसको दे दी आधी इसको। आयशा रजी अल्लाह तआला ने बड़ा हैरान हुई, जब आप सल्लम से जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला ने इस औरत के लिए जन्नत को वाजिब कर दिया इस बात की वजह से। ये मुस्लिम की हदीस है। तो देखिए ना आपके हजरत आयशा तो हैरान हुई, उनकी तो औलाद नहीं थी, उनको नहीं पता कि ये किस तरह का जज्बा एक औरत ने देखे कैसे अपनी बच्चियों के लिए किया। तो इसी तरह ये फरमाए जिस शख्स की 3 बेटियां वो उन पर सबर करे, उनको खिलाए पिलाए, उनकी उनके ऊपर अपनी कमाई से उनको पहनाए, तो वो लड़कियां उसके लिए दोजख की आग से हिजाब बन जाएंगी। तो और क्या एक इंसान को इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती? इतनी फजीलतें बेटों के ऊपर नहीं बेटियों के ऊपर फरमाई, क्योंकि ये बेटियों को इस तरह से करते थे। और आज सबसे ज्यादा औरतों को ही मुश्किल है इस दीन के साथ, और औरतें ही इसके खिलाफ बोलती हैं सबसे ज्यादा खड़ी हैं। इनको समझ ही नहीं है ना कि क्या इनके साथ सलूक होते थे एक औरत के साथ। एक बेटी के साथ क्या सलूक होता था, और कैसे अल्लाह ताला ने किस तरह इस औरत का मकाम कहां से कहां पहुंचा दिया। लिल्लदीन ला यूमिनून बिल आखिरत, उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर, ये ईमान नहीं रखते आखिरत पर क्यों कहा गया, इसलिए कि ऐसे काम वो ही कर सकता है जिसको आखिरत पर ईमान नहीं है। मसलो सऊ उनके लिए बुरी मिसाल है, उनके लिए बुरी मिसाल है इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, यानी उन बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं, या फिर ये भी मतलब है ये जो अल्लाह ताला के लिए बेटियां करार देते हैं। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ताला की तो मिसाल बहुत आला है, लैसा कमिसली ही शई, उस जैसा तो कोई है ही नहीं, और ये कहते हैं कि उसकी औलाद है, उसकी बेटियां। वहुवल अजीजुल हकीम, जबकि वो ताकतवर है, कुव्वत वाला है, हिकमत वाला है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वलहु युआखिदुल्लाहु अन्नासा बिज़ुल्मिहिम, मगर अल्लाह पकड़ने लगे ना लोगों को उनके जुल्म की वजह से। जुल्म कौन सा? ये शिर्क, ये बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना, उनको कमतर समझना। आज भी माशरों में जहां पे अगर बेटी को जिंदा नहीं दरगोर किया जाता, पेट में ही मार दिया जाता है, जब पता चलता है कि ये बेटी है तो कहते हैं इसको यहीं पे खत्म कर दो। अब देख लें कि उस वक्त वो कत्ल है, इसलिए कि उसके अंदर जान आ चुकी है, उसकी जेंडर डिटरमिन हो चुकी है, तो फिर उस वक्त उसको कत्ल करना हुआ एक जिंदा को, जैसे एक जिंदा इंसान को कत्ल करते हैं वैसे ही है, ये कत्ल है, उस वक्त उसको अबॉर्ट करा देते हैं। इसी तरह ऐसा सलूक करते हैं बेटियों के साथ, बेटों को ज्यादा खाने को देना, बेटी को कम देना, इसने क्या करना है, तो पराई चीज है। बेटियों को जायदाद से हिस्से ना देना, क्योंकि इसका तो हिस्सा चला जाएगा किसी और के घर, हम बेटों को दें वो हमारे हैं। तो कैसे इंसान जो है ना, किस किस तरह यहां पे भी डंडी मार जाता है, ये जो मुसलमान है जो अपने ईमान कहता है मेरा ईमान है इस कुरान के ऊपर, वो देखें वो हरकतें करते हैं। जिंदा दरगोर ना भी किया तो ऐसे ही छोड़ दिया, अगर इसकी शादी कर देंगे और ये हमारी जायदाद ले जाएगी, इसके नाम तो इतनी जायदाद है, इसको घर पे ही रखो, इसकी कुरान से शादी कर दी, इसको ऐसे ही या पड़ा रहने दिया, कितने तरह के जुल्म हो रहे हैं। जबकि ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम ने आपको हकूक दिए हैं। अब औरतों को असल में जहालत इतनी है, वो इल्म लेते नहीं है, पता ही नहीं है कि इस्लाम ने हमें क्या हकूक दिए, बस सिर्फ बोलते ही जाना, क्योंकि आदमियों ने ये सिखा दी, इस्लाम ने तो तुझे देखो पर्दे में रख के तो तेरे ऊपर कितना जुल्म कर दिया, अब वो इसी के ऊपर रोए जा रही है, हमें तो हक नहीं मिला, हमें तो इस्लाम ने कुछ नहीं दिया, हमें तो इस्लाम ने हमारे अंदर ज्यादती हो गई। तो इल्म लोगे तो तुम्हें पता चलेगा, फिर इल्म की अहमियत की बात आ गई। तो अगर अल्लाह ताला पकड़ने लगे ना लोगों को उनके जुल्म के ऊपर, जुल्म मैंने आपको पिछली बार तीन तरह के जुल्म बताए थे, कि एक अल्लाह ताला के साथ जुल्म के उसमें करना, उसकी उसके साथ शिर्क करके ये भी जुल्म है, एक इंसानों के साथ जुल्म करना कि जब उनके ऊपर जैसे अभी ये बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना जुल्म है, एक इंसान अपने आप पे जुल्म करता है जब बहुत गुनाह करता है, तो जब किसी तरह का भी जुल्म है अगर अल्लाह ताला लोगों को उनकी इन बातों पे पकड़ने लगे, मा तरका अलैहा मिन दाब्बतिन, तो कोई जानदार चलने वाला ना छोड़े जमीन के ऊपर, कोई जिंदा ना बचे यहां पे, सब खत्म हो जाए। अब देखे ना इंसान जुल्म करता है जिस वक्त वो बेटियों का हक नहीं दे रहा, जब उनको कमतर समझता है, हकीर समझता है, या इंसान गलत नजर उठा रहा है, वो भी जुल्म है, गलत बोल रहा है, हराम बात बोल रहा है, बेहयाई की बातें बोल रहा है, वो भी जुल्म है, कितनी तरह के जुल्म इंसान करता है, जितने अल्लाह की नाफरमानी के काम है वो सब जुल्म है। अगर अल्लाह ताला अपनी नाफरमानियों पे गिरफ्त करने लगे ना फौरी उस वक्त पकड़ ले, तो कोई भी नहीं बचेगा। वलाकि युअख्खिरुहुम इला अजलि मुसम्मा, लेकिन वो मौखर करता है, वो मोहलत देता है एक मुकर्रर मुद्दत तक, फइजा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख्खिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, ऐसे ना समझना कि कभी पकड़ेगा ही नहीं, हमेशा इसी तरह छूटी मिली रहनी है, आज अगर जो जुल्म कर रहे हैं कोई कुछ कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं, अल्लाह के हाँ देर है ढेर नहीं है, अगर आज नहीं किसी ने पकड़ा तो ये ना समझना तुम्हें खुली छुट्टी मिल गई है, जिस दिन उसने पकड़ा ना तो फिर कोई एक घड़ी की भी ताखीर नहीं होगी, ना एक घड़ी आगे बढ़े, ना अर्ली आएगा ना लेट आएगा, जब वो पकड़ने लगता है तो उसका एक टाइम है, वो मोहलत देता है, और ये उसकी उसकी मेहरबानी है कि वो मोहलत देता, वरना नहीं किसी ने बचना था। तो इस उसकी मेहरबानी को उसकी कमजोरी ना समझो कि वो पकड़ नहीं सकता, या उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, या कौन पूछने वाला यहां। नहीं, लेकिन वो चाहता है कि तुम पलट आओ। उसका उसकी शफकत है, उसकी मेहरबानी है। वरना देखिए, ये जो इंसान अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियां करता है, उसी वक्त जुबान अगर गंग हो जाए, जुबान अगर शल हो जाए, तो क्या करे इंसान? आंख हराम देखे, आंखें अंधी हो जाए, कान बुरा सुने, गलत सुने। अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया, धड़ल्ले से सुन रहे, बल्कि कहते नहीं ये हराम है ही नहीं है तो हलाल है, उसी वक्त कान बहरे हो जाए, क्या कर सकोगे तुम? अल्लाह तुम्हारी समात ले जाए, तुम्हारी बसारत ले जाए। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, फिर बताओ कौन लेकर आएगा वापस? लेकिन उसकी मेहरबानी, ये है उसका रहम कि वो रहीम है, वो सबर करता है, उसका हिल्म है, उसकी बर्दाश्त है कि वो इंसानों को बर्दाश्त करता है, हालांकि वो पकड़ सकता है फिर भी वो बर्दाश्त करता है। वही जालून लिल्लाह मा यकरहून, और वो अल्लाह के लिए वो चीजें मुकर्रर करते हैं जो खुद अपने लिए नापसंद करते हैं। तो इसकी एक मिसाल तो पहले गुजर गई कि अपने लिए बेटियां पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला के नाम मंसूब कर देंगे उसकी बेटियां। इस तरह आप बहुत सारी चीजों में देख लें कि वो चीजें जो हम अपने लिए नहीं पसंद करते ना, वो अल्लाह के लिए लगा देते। जैसे मैंने आपको अभी एक मिसाल दी है कि आपने किसी के साथ एहसान किया, कोई आपके नौकर को जाके शुक्रिया करे, तो आप कहेंगे मैं तो आइंदा इसके साथ बात नहीं करनी, आइंदा मेरी तौबा जो मैं इसके साथ कोई नेकी करूं। ये कैसा नाशुक्र इंसान है, ये कैसा इंसान है कि जो, या कोई आपको थैंक यू ही ना बोले, बस खामोश हो गया, लेता जा रहा है, आप उसके पर एहसान करते जाना, उसको मुड़ के ये कभी याद ही नहीं आया कि वो कभी आपको एक लफ्ज का भी थैंक यू बोल दे। अब आप कहते हैं ये तो कितना एहसान फरामोश है, ये तो नमक हराम है, ये तो ऐसा है ऐसा है। आप कहते हैं इसके साथ मैंने कभी नहीं नेकी करना। अपने लिए हम क्या चाहते हैं कि कोई हमारा शुक्रिया भी अदा करे, अपने लिए हम क्या चाहते हैं कोई बेस्ट चीज हमें दे, अपने लिए हम क्या चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे इतने फरमाबरदार हों, जो हम कहें वो फौरन, हम कुन कहें तो फयकून हो जाए। अपने लिए हम क्या चाहते हैं कि हमारी गुण गाए हो, क्योंकि हमने इनके पर एहसान किया। लेकिन हम खुद अल्लाह ताला के साथ क्या करते हैं? वो जो हमें अपने लिए कभी पसंद नहीं है वो करते हैं। हमें अपने लिए पसंद नहीं हमारे बच्चे नाफरमान हो, हम अल्लाह की कितनी नाफरमानियां करते। हम अपने लिए पसंद नहीं करते कि हम जिसके ऊपर एहसान करें वो हमारी नाशुक्री करे, हम अल्लाह ताला के एहसान सारे लेके उसकी नाशुक्री करते। कितनी मिसालें मैं आपको दूं कि हम अपने लिए जो चीजें नहीं पसंद करते वो ये अल्लाह ताला के लिए करते हैं। हमारा बच्चा अगर आगे से हमें एक दफा जवाब दे दे तो हम उसके लिए क्या हालत करते, हम उसकी क्या कैसी डांट पिलाते, कैसे उसके साथ हम उसको झिड़कते और कैसे उसके साथ एक लगा देते। दो तीन दफा कहे नहीं मानता ना, तो फिर हम उठ के फिजिकल फिर शुरू हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला के साथ वो ही काम करते, नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं सुनना, और नेमते लिए जाना लिए जाना लिए जाना। तसिफ़ अलसीना तुम, हालांकि मैंने आपको कहा इंसानों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता अल्लाह के साथ। हमने क्या किसी के ऊपर भी हम ऐसा एहसान नहीं कर सकते जैसे अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किया। व तसिफ़ अलसीना तो हमल क्या दीबा, और उनकी जुबानें झूठ बयान करती हैं। कैसे? अन्ना लहुमुल हुस्ना, कि जब वो कहते हैं कि हमारे लिए तो भलाई है, हमारे लिए तो सारा हमें अच्छा यहाँ पे भी मिला है वहां पे भी हमें अच्छा ही मिलेगा, वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, सब ठीक है, कुछ हम क्यों जहन्नुम में जाएंगे, वो तो काफरों के लिए। मुतमईन जो बैठे हुए हैं बुराइयां करके भी, बड़े बड़े गुनाह के काम करके भी, सोचते हैं कि वहां पे भी हमें जन्नत मिल जानी है, ये इनकी जुबानें झूठ बोलती हैं, झूठ है ये। वहां पे भी हम अच्छे रहेंगे, आखरत में भी हमारे लिए सब कुछ है। ला जरम अन्ना लहुमुन नार, कोई शक नहीं इसमें कि इनके लिए आग है। इनकी जुबानें झूठ बोलती हैं कि हमें यहां मिला है तो वहां भी मिल जाएगा, हम गुनाह भी करेंगे, हमें कोई नेकी को कुछ समझते नहीं है, कोई इसकी अहमियत नहीं है, फिर भी जन्नत हमारे लिए है। बस हम असल में इंसान जो गुनाह करता है ना, वो साथ एक जरा सी नेकी का काम छोटा सा करके समझते हैं बस इतना में जन्नत में तो मैंने चले ही जाना। अगर मैंने सारी रात गुनाह किया, सारी रात जुआ खेला, शराब पी, ये सब किया, और सुबह को उठ के, हाँ गरीब लोगों की मदद भी करनी चाहिए, उनको थोड़ा सा कुछ दे दिया, इधर कुछ चैरिटी दे दी, उधर कुछ मस्जिद में लगा लिया, तो थोड़ा सा कोई डोनेशन यहां वहां दे दिया, तो बस हम बहुत अच्छे हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम इतने नेकी के भी तो काम करते हैं। नहीं, समझते उनके लिए वहां पे जन्नत है? नहीं, ला जरा मानना लहमुन्नारफरातून, और वो आगे आगे लीड करेंगे, आगे आगे जाएंगे। तल्लाही लकद अरसलना इला उममिन मिन कबलिक, कसम अल्लाह की हमने रसूलों को भेजा कौमों की तरफ, आपसे पहले भी रसूल भेजे हैं, हर जमाने में रसूल आए हैं, लेकिन हर जमाने में क्या हुआ, फज़य्यना लहुम शैतान व आमालहुम, मैंने आपको जैसे कहा ना पहले, शैतान आमाल को, गुनाहों को इतना मुजय्यन करके दिखाता है ना, इतना खूबसूरत करके दिखाता है कि इंसान को गुनाह गुनाह ही नहीं लगता। कितने आज जो गुनाह के काम है, देखिए सरीहान गुनाह के काम है, क्लियरली कुरान और हदीस में आए हैं, उनके इतने खूबसूरत आज नाम दे दिए। ऐसे ही है जैसे कि आप जहर के ऊपर लेबल लगा ले, आबे हयात, जिंदगी का पानी, और वो है जहर, तो वो जिंदगी का पानी ही नहीं बन जाएगा, वो रहेगा जहर ही, लेकिन आपने उसको बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया, बड़ा खूबसूरत लेबल लगाया उसके ऊपर, वो लगाया, या आपने उसको बड़ा प्रेजेंटेबल बना के किसी को पेश किया, और वो कहे हाय कितना खूबसूरत है। ये करता है शैतान गुनाहों के साथ, उनको इतनी प्यारी रैपिंग देता है, उनको इतना प्यारा डेकोरेट करता है, और इंसान को दिखाता है ये तो फन है, ये तो एंटरटेनमेंट है, ये तो कल्चर है, कभी सकाफत के नाम पे, कभी फैशन के नाम पे, कभी दुनियादारी के नाम पे, कभी ऐसी चीजें, ऐसी सी चीजें, ऐसी सी इन गुनाहों को ऐसा सजाता है ना, सजा के ऐसे दिखाता है ना कि वो गुनाह नहीं लगता, और वो लगता है कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं है, सब कर रहे हैं ऐसे, तुम कोई इससे ज्यादा गुनाहगार नहीं हो जाओगे। एक तरफ अल्लाह का दीन है जो रसूल लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ शैतान अपनी चीजों के अंदर लगा हुआ है कि वो उनको खूबसूरत बना बना के दिखा रहा है, उनके आमाल, फहुआ वलियो हम लियो, तो आज के दिन भी वो उनका वली है, यानी कयामत के दिन भी वो उनका साथी होगा, फिर दुनिया में साथी बनाया तो वहां पे क्यों नहीं फिर। और आज के दिन से मतलब ये भी हो सकता है, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि आज के दिन भी वो उनका साथी है मुशरिकीन का, वलहुम आदाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मुशरिकीन को तो दिखाए हुए थे रसूल की मुखालफत करना, उनको बड़ा मुजय्यन करके दिखा था, बड़ा अपने तरफ से अच्छा काम कर रहे थे वो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहे हैं शैतान ने, कितना मुजय्यन कर दिया कि बड़ा नेकी का काम है जो तुम कर रहे हो। गुनाहों को वो मुजय्यन करता है, कभी आपको ये नहीं कहेगा ये गुनाह है, ये बड़ा बुरा काम है, तुम इसको कर लो, वो पागल थोड़ी है कि ऐसे कहे, उसको बड़ा खूबसूरत बनाता है। बेहयाई को देखिए आज कितना खूबसूरत बनाया हुआ है शैतान ने, बेशर्मी को, गंदी बातों को, झूठ को, बेईमानी को कितना मुजय्यन कर दिया, ये झूठ थोड़ी है, ये मजाक मजाक में हम तो कर रहे थे, लो इतनी सी बात को तुम ये समझ रहे हो, सदका करने लगते हैं तो कैसे दिखाता है पहले कि अच्छा इंसान प्लानिंग बड़ी करता है, प्लानिंग नेकियों की बहुत करता है, लेकिन उसके बाद शैतान उनको ऐसा उसको अंदर डालता है कि वो सारी नेकी भूल जाता है। आपने सोचा मैं तो, मुझे लगता है मैं तो $1,000 यहाँ पे दूंगी, फिर थोड़ी देर में सोचते नहीं मेरे ख्याल में 1,000 नहीं 500 दे देती हूँ, फिर थोड़ी देर में सोचते नहीं मेरे ख्याल इतने लोग और भी तो देने वाले हैं ना, मेरे ख्याल 200 में काम चल जाएगा, अब उसके बाद फिर आता है नहीं वैसे इनको इतनी भी नहीं जरूरत, मेरे ख्याल कहीं और दे दूंगी, छोड़ो 200 भी क्या देना, वो कहीं ऊंट का आपने प्रोग्राम बनाया कि वो सदके में देंगे, वो अंडे पे ले आता है, फिर अंडे तक भी को सदका नहीं करने देता, ये हाल है। तो वो मुजय्यन करता है, और मुजय्यन करने से फिर इंसान धोखा खा जाता है, और इंसान को लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, इसमें क्या बुराई है, आप कपड़े पहनने लगते हैं, आप कुछ खाने लगते हैं, आप कहीं कमाई करने जाने लगते हैं, आप देख लेना, आप कोई भी चीज को देख ले, उसको वहां पे गुनाह को सजाता है वो, फिर आपको दिखाता है, वरना गुनाह बहुत गंदा है, बहुत कबी है, बहुत बदसूरत है, अगर वो उसकी बदसूरती के साथ आपके सामने लाए तो आप कभी ना करें, लेकिन जब वो मुजय्यन करके दिखाता है ना तो फिर इंसान इसमें आ जाता है, कभी ख्वाहिशात को मुजय्यन कर देता है, कोई बात नहीं फिर क्या हो गया, और इंसान फिर इन्हीं बातों के पीछे देखे बात है ना कि इनके लिए नार है। नार देखिए, इसी जिंदगी में इंसान ने कितना कितनी बुराई कर दी कि अपने लिए आग का सौदा कर दिया, बर्बाद कर दिया अपनी हमेशा की लाइफ को, दुनिया की छोटी छोटी हकीर सी ख्वाहिशात के पीछे, शैतान के पीछे चल के, इन गुनाहों को करके जो बड़े बजाहिर खूबसूरत लग रहे, याद रखिए वो खूबसूरत ही लगेंगे। तो ये धोखा ना खाना कि अगर गुनाह होता तो फिर ये इतना बुरा ना होता, तो ये तो सब कर रहे हैं, ये तो इतना अच्छा लग रहा है, इसमें तो बड़ा फन है, ये तो बड़े मजे की चीज है, कितना मजा आ रहा है। गुनाह के उस वक्त करने में तो लज्जत होती ही है, अगर अल्लाह ताला उसके अंदर ऐसी चीज डाल दे ताकि लज्जत ना होती तो कोई गुनाह ही ना करता। यही तो इम्तिहान है कि इंसान को उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट में इंसान को मजा आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, और फिर शैतान की थपकियां होती हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कर लिया तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, जाके इंसान फिर तौबा भी ना करे। तो इसलिए इंसान शैतान की जब मानता चला जाता है, आप देख लेना सुबह को उठना है, सुबह को उठना में क्या बताता है, अजान हो रही है, कैसे मुजयन करता है, अरे नहीं रात को बहुत लेट सोए थे, इतनी लेट सोए थे, अब इतनी थकी हुई हूं मैं, हल्का ज़ा ही पढ़ लूंगी या थोड़ी देर में, अभी उठती हूँ अभी उठती हूँ अभी उठती हूँ, करते करते नमाज ही कजा हो गई। आपने मेकअप कराया, आपने $150 का मेकअप कहीं से करा लिया, अब उसके बाद आ गई बड़ा बहुत बड़ा फंक्शन है, अब आ गया नमाज का टाइम, अब वुजू नहीं है, अब चलो छोड़ो। अब कितनी औरतें बैठी होती हैं, आप ये देख लें कि उस वक्त शैतान क्या कहता है, कोई बात नहीं बाद में कजा करके पढ़ लूंगी, कितनी उठती हैं, और कितनी इस वजह से कि वुजू करना पड़ेगा, हमारा तो मेकअप खराब हो जाएगा, हम कैसे करें। अब देखिए उस वक्त शैतान क्या सुझाता है कि वो मेकअप ज्यादा जरूरी है ना, मेकअप को बचाना ज्यादा जरूरी है, नमाज तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, इतनी भी क्या बात हो गई, कजा नहीं पढ़ सकते, कजा पढ़ सकते, कभी कजा भी हो जाती है, तो हमेशा थोड़ी होता है कि ना ही टाइम पे ही पढ़े, इंसान टस से मस नहीं होता, फिर वही वही बैठा रहता है। कितनी हकीर ख्वाहिशात के पीछे हम अपने रब को नाराज करते हैं, शैतान की बातों में आ जाते हैं। हाँ ठीकरी जैसी चीजों के लिए अपने प्यारे रब को नाराज कर देना कितना घाटे का सौदा है। वमा अंजलना अलैकल किताबा, और नहीं नाजिल किया हमने किताब को आप पे, इल्ला मगर इसलिए कि लितुबय्यिन लहुम अल्लज़ी इख्तलफू फीह, फिर वही वाली बात आ गई जो पहले आई थी, हमने इसलिए किताब को आपके ऊपर नाजिल किया है, किसी पत्ते पहाड़ के ऊपर नहीं ना रख दिया उसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पे नाजिल हुई है, इसलिए ताकि आप लोगों को वाजे कर दे जो इसमें इख्तलाफ करते हैं, या इसका मतलब है जो इख्तलाफात का हल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, वहुदम व रहमतन लिकौमी युमिनून, इसमें हिदायत भी है इसमें रहमत भी है उस कौम के लिए जो ईमान रखती है, ईमान लाने वालों के लिए इसमें हिदायत है। अगर आपका ईमान ही नहीं है इसके ऊपर तो क्या आपको हिदायत देगी, क्या आपको गाइड करेगी, एक गाइड है, रहनुमा है, राह दिखाती है और रहमत है, और अगर उठा के अलमारी के ऊपर रखा हुआ और बस उसको देखती रहती है, कितना खूबसूरत गिलाफ है ना मेरे कुरान का, मैंने खुद सिया है इसका, गोटे लगा लगा के सिया, तो रहमत कैसे बनेगी जब तक जिंदगियों में नहीं आएगी, अलमारियों में सजा के रखा हुआ। तो अगर इसको रहमत बनाना है तो ये उसी के लिए बनेगी जिसका इसके ऊपर ईमान है, जो ईमान रखता है ना वो कैसे इसको छोड़ेगा, जिसको यकीन है कि इससे बढ़ के कोई चीज नहीं, इससे बढ़ के कोई इल्म नहीं, वो फिर इसको उठाएगा भी, इसको पढ़ेगा भी, इसको सीखेगा भी, इसको समझेगा भी, कहेगा ये तो मुझे राह दिखाती है, वो इसके ऊपर चलेगा भी तो ये रहमत बन जाएगी उसके लिए, दुनिया में भी रहमत बन जाती है। और हम सोचते हैं कि जो लोगों को बिठा के कुरान खानी करा लें बस रहमत हो गई हमारे घर में, सारा साल उसके बाद बंद कर दो, जब रमजान आएगा तो उस वक्त पढ़ लेंगे बस रहमत आ गई, अब सारे साल रहमत की जरूरत नहीं, रहमत तब बनेगी जब आपके अंदर ईमान है, ईमान है कि ये रास्ता दिखाती है, ईमान है कि ये रहमत है, तभी ये आपके लिए रहमत बनेगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपका ये ईमान है और आप इसको छोड़ दें तो आप इसके साथ मैक्सिमम टाइम लगाएंगे। अब हम कहते तो हैं कि ये हिदायत है रहमत है, लेकिन उसके बाद कितने मुसलमान हैं जो इसको पढ़ने के लिए आते हैं, कितने कितने हैं जो इसको खोलते हैं हर रोज, कितने हैं जो इसको सीखने के लिए रजामंद होते हैं। रहमत कैसे बने फिर? अल्लाह ताला हमें इस किताब को सही सीखने, समझने, इसके ऊपर अमल करने वाला बना दे, और अल्लाह ताला इसको हमारा रहनुमा बना दे और हमारे घरों में रहमत का जरिया बना दे। अल्लाह ताला इसका हक अदा करने वाला हम सबको बना दे और हमारी औलादों को इसको हमारा गाइड बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.